आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में कल शाम हुए कार विस्फोट में 8 लोगों की मौत। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताई गहरी संवेदना। प्रदेश सहित कई राज्यों में बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान की यात्रा पर जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज। और भोपाल इंदौर में शीतलहर का प्रकोप, शहडोल में पारा 7 डिग्री तक पहुँचा। आज भी 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक कार विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जांचकर्ता धमाके की जांच में सभी विकल्पों को ध्यान में रख रहे हैं। कल शाम लगभग 7 बजे ट्रैफिक सिग्नल के पास एक कार में धमाका हुआ। धमाके में आसपास के अन्य वाहनों को भी क्षति पहुंची और कई लोग घायल हो गए। श्री शाह ने कहा,
ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे देंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा भी किया और स्थिति का मुआयना लिया। इससे पहले श्री शाह घायलों का हालचाल जानने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल भी गए। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों के समुचित इलाज करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली कार विस्फोट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली में लाल किला मैदान के बाहर हुए कार में विस्फोट की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। डीजीपी ने सतर्कता बरतने और संदिग्धों पर नजर रखने तथा चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री भूटान के 4th राजा की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह में हिस्सा लेंगे और थिम्पू के ताशी छोजोंग में पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना भी करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देशभर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से लद्दाख की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने लद्दाख के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों को बड़ी राहत प्रदान की है। पश्मीना ऊन, नमदा कालीन और अन्य हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी अब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही एप्रिकॉट यानी खुबानी और सी बकथॉर्न जैसे उत्पादों पर कर में कमी से हजारों कृषक परिवारों को लाभ हुआ है। इससे महिला स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिला है। वहीं 7,500 रुपए तक के होटल के कमरों पर भी कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी सुधारों ने न केवल लद्दाख की विरासत की रक्षा की है बल्कि इसके स्थायी उद्योगों को भी बढ़ावा दिया है। शिवांग के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज होगा। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक चलेगा। इनमें केवल 7 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस महीने की 6 तारीख को वोट डाले गए थे। पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ था। दोनों चरणों के वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल राजधानी भोपाल में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने ओमकारेश्वर में एकात्मधाम परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए सूचकांक में छूट प्रदान करने और आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी। संस्कृति विभाग द्वारा ओमकारेश्वर में एकात्मधाम परियोजना में आचार्य शंकर के 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने खंडवा जिले की मानधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड श्रेणी का एक नवीन पद और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस तरह कुल 7 नए पदों के सृजन और अनुमानित वित्तीय भार 52,76,000 रूपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति भी दी है। खंडवा जिले की ओमकारेश्वर स्थित प्राचीन ममलेश्वर मंदिर परिसर में अब श्रद्धालु सभी शिव मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना कर सकेंगे। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर मंदिर परिसर और शिखर क्षेत्र के सभी मंदिरों की साफ सफाई की गई है। इसके बाद कल सोमवार से पूजा अर्चना का कार्य नियमित रूप से प्रारंभ कर दिया गया है।
ममलेश्वर हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है एवं समस्त सनातन की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ममलेश्वर परिसर में ASI के द्वारा, क्योंकि वहां पर पूजा पाठ भी नहीं हो रहा था और सुरक्षा की दृष्टि से भी बंद रखे गए थे, इस वीकेंड से ये सभी मंदिर उन्हें खुलवाए गए हैं। उनमें पूजा पाठ फिर से शुरू किया गया है। लक्ष्य यही है कि जितने भी हमारे प्राचीनतम मंदिर हैं उन सब में अध्यात्म बढ़ता रहे, लगातार वहाँ पूजा पाठ हो और श्रद्धालुओं को न केवल हमारे मुख्य शिवलिंग अपितु जो हमारे संलग्न मंदिर हैं उनके दर्शन का भी लाभ प्राप्त।
प्रदेश के अधिकांश हिस्से तीव्र शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शहडोल और बैतूल समेत कई जिलों में तीव्र शीतलहर चली। बालाघाट में शीतल दिन का प्रभाव रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, राजगढ़ और इंदौर जिलों में आज भी तीव्र शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। वहीं सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, रीवा, शहडोल और छिंदवाड़ा समेत 18 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट है। बालाघाट में शीतल दिन की स्थिति बनी रह सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में 2 साल से 18 साल तक के क्लब फुट से ग्रसित बच्चों की सर्जरी कराने पर इंदौर जिले को क्लब फुट मुक्त जिला घोषित किया गया है। आगर मालवा में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत कलेक्टर ने तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जबलपुर रेल मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य तय समय से 4 माह पहले ही पूरा कर लिया है। अक्टूबर माह में विशेष जांच अभियान के दौरान कुल 3,86,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैतूल में किसानों को उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए जिले में सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।